अदिति ने आर्यन को जाते हुए देख लिया था। वो पल भर के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ, बस इतना दिखा कि आर्यन ने जैकेट उठाई, एक आखिरी नज़र डाली और बिना कुछ कहे हॉल से बाहर निकल गया। म्यूज़िक अब भी चल रहा था, लाइट्स अब भी घूम रही थीं, लोग अब भी हंस रहे थे और झूम रहे थे, लेकिन अदिति के भीतर कुछ अचानक खामोश हो गया। उसने विक्रांत की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो अभी तक उसके होठों तक नहीं पहुंचा था। वो चला क्या? उसने धीमे से पूछा। विक्रांत में हल्के से कंधे उचकाए। लगता तो वही है। अदिति की भौहें से कुड़ गईं। बिना कुछ बताए, उसके स्वर में शिकायत थी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी कि शायद विक्रांत कहे कि नहीं, वो वापस आएगा। लेकिन विक्रांत मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत सधी हुई थी, बहुत सोच समझ कर ओढ़ी गई। चिंता मत करो, उसने सहज लहजे में कहा, मेरा ड्राइवर है, तुम दोनों को घर छोड़ देगा। अदिति ने उसकी ओर देखा। दोनों? हाँ, विक्रांत ने बिना झिझक कहा। इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। उसकी मुस्कान अब भी वहीं थी, हल्की नापीतुली, लेकिन अदिति को वो मुस्कान अब चुभने लगी थी। उसने एक बार फिर डांस फ्लोर की ओर देखा। आर्यन कहीं नहीं था। उसके सीने में एक अजीब सा खालीपन उतर आया। उसे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। ना इसलिए कि वो उसे छोड़ गया था, बल्कि इसलिए कि उसने बिना पूछे उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने सोचा था अगर उसे जाना होगा तो वो कम से कम आकर बताएगा, लेकिन नहीं, वो चला गया। और अदिति पहली बार अपने ही फैसले पर खुद से सवाल करने लगी। दो घंटे बाद शहर के एक दूसरे कोने में एक कमरा था। मध्यम रोशनी, मोटे पर्दे और टेबल पर रखी आधी खाली शराब की बोतलें। विक्रांत सोफे पर पसरा हुआ था। एक हाथ में ग्लास था और दूसरे हाथ से वो टाई ढीली कर रहा था। उसके सामने उसका दोस्त बैठा था। नाम जरूरी नहीं, बस इतना कि वो विक्रांत को काफी अच्छे से जानता था। दोनों के बीच धुएं और शराब की मिली जुली गंध थी। दोस्त ने घूंट लिया और फिर बोला, यार एक बात पूछूं? विक्रांत ने आंखें उठाए बिना कहा, पूछ। दोस्त ने कहा, तू क्यों हर वक्त उस आर्यन के पीछे पड़ा रहता है? उसकी आवाज में हैरानी थी और थोड़ी सी झुंझलाहट भी। इतना क्या है उसमें, ना वो तुझसे ज्यादा स्मार्ट है और अमीर, दोनों बराबर हो। फिर भी, विक्रांत ने ग्लास घुमाया, उसमें बर्फ टकराई और उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसा, एक छोटी सी हंसी जिसमें मजा नहीं था, बस कड़वाहट थी। पता नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे उससे बहुत जलन होती है। दोस्त ने भौहें उठाई। जलन? किस बात की? विक्रांत ने सिर पीछे टिकाया और छत की ओर देखते हुए बोला, उसके पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर हैं हमेशा से, लेकिन हर मीटिंग में, हर डील में लोग उसी का नाम लेते हैं। आर्यन ये कर रहा है, आर्यन ने वो संभाल लिया। उसकी आवाज में अब दबा हुआ गुस्सा था। और मैं? उसने हंसते हुए कहा, मैं बस उसके पार्टनर का बेटा। दोस्त कुछ कहना चाहता था लेकिन विक्रांत रुका नहीं। और वो लड़की? उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, उसकी पहली गर्लफ्रेंड। दोस्त ने ध्यान से देखा। हाँ, मैंने उसे ऑफर दिया था, विक्रांत ने सीधे कहा। दोस्त चौंक गया। क्या? हाँ, विक्रांत की आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने कहा था आर्यन को छोड़ दो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कमरे में एक पल का सन्नाटा छा गया। और? दोस्त ने धीरे से पूछा। वो नहीं मानी, विक्रांत ने कंधे उचकाए। उसने मेरे मुंह पर ना कहा, उसकी आवाज़ सख्त हो गई। और सिर्फ ना नहीं, उसने कहा, आर्यन जैसा इंसान किसी और से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। दोस्त ने सांस छोड़ी। ओह, विक्रांत की मुट्ठी अनजाने में भींच गई। उस दिन उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पहली बार लगा कि मुझे नीचा दिखाया गया है सबके सामने। उसने शराब का एक और घूंट लिया। शायद उसी दिन से ये जलन मेरे अंदर बैठ गई। दोस्त ने उसे देखा। और अदिति? विक्रांत की मुस्कान धीरे धीरे लौट आई, लेकिन अब वो और ज्यादा खतरनाक थी। अब? उसने कहा, मुझे वो चाहिए, जो भी आर्यन का है मुझे वही चाहिए। उसकी आवाज में अजीब सी जिद थी। दोस्त ने हंसने की कोशिश की। तू मजाक कर रहा है ना? विक्रांत ने उसकी ओर देखा, सीधे, ठंडेपन से। नहीं, उसने कहा, मैं सीरियस हूँ। वो थोड़ा आगे झुका। सोच, उसने कहा, कितना मजा आएगा। दोस्त का माथा सिकुड़ गया। क्या? विक्रांत ने हल्की आवाज में कहा, जब उसकी वाइफ मुझे एंटरटेन करेगी। कमरे की हवा एक पल के लिए और भारी हो गई। दोस्त ने ग्लास नीचे रख दिया। विक्रांत, उसने सख्त लहजे में कहा, तू हद पार कर रहा है। विक्रांत हंसा। हद? हद तो उसने पार की थी जब उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया था। अब मेरी बारी है। दोस्त ने सिर हिलाया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने कहा, ये आर्यन उस लड़की से इतना प्यार करता था तो फिर उसे छोड़कर अदिति से शादी क्यों की? विक्रांत का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस ग्लास उठाया, एक घूंट लिया और कमरे में फिर से गहरा ठहराव छा गया। विक्रांत की कार शहर की सड़कों से निकलकर हवेली की ओर बढ़ रही थी। बाहर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी कांच पर फिसलती जा रही थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। अदिति पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसके नीचे दबा हुआ दर्द।
वो खिड़की से बाहर देख रही थी जैसे शब्दों से बच रही हो। विशाल उसके पास बैठा था। उसने एक नजर अदिति पर डाली, फिर धीरे से बोला, अदिति शायद कोई जरूरी बात होगी, आर्यन यूं ही नहीं जाता, तुम जानती हो वो ऐसे बीच में। प्लीज विशाल, अदिति ने बात काट दी। उसकी आवाज सख्त थी लेकिन उसमें थरथराहट छुपी नहीं थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, उसने गहरी सांस ली। वो मुझे इसी तरह परेशान करता है, बिना बताए बिना समझाए, जैसे मैं कोई सवाल ही नहीं हूँ। कार में कुछ पल की चुप्पी छा गई। इंजन की हल्की गूंज और टायरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। विशाल ने फिर कोशिश की, इस बार आवाज और धीमी रखी। देखो गुस्सा आना जायज है, लेकिन शायद वो किसी मुसीबत में। बस, अदिति ने आंखें बंद कर ली। आज नहीं विशाल, हर बार मैं ही समझूं, हर बार मैं ही इंतजार करूं, ये सही नहीं है। उसकी उंगलियां उसकी गोद में कस गईं। अगर उसे जाना था तो एक पल लगता है बताने में, एक कॉल, एक मैसेज। विशाल ने सिर हिलाया, उसे लगा जैसे हर शब्द अभी और चोट पहुंचा देगा। ठीक है, उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हल्के से जोड़ा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। अदिति ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन भौहों के बीच की सिकुड़न बता रही थी कि भीतर कितना उथल पुथल है। कार एक मोड़ मुड़ी, दूर से हवेली की परछाई उभरने लगी, पुरानी, स्थिर, जैसे सब कुछ देख चुकी हो। ड्राइवर ने गेट के पास कार धीमी की, लोहे का गेट खुला और कार अंदर दाखिल हो गई। हवेली के आंगन में रुकते ही अदिति ने आंखें खोली। उसने बाहर देखा, वही परिचित दीवारें, वही खामोशी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। कार रुकी, विशाल ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। अगर चाहो तो, अदिति ने सिर हिलाया, नहीं। वो बाहर उतरी, उसकी चाल में थकान थी लेकिन कदमों में दृढ़ता भी। उसने हवेली की ओर देखा, फिर बिना पीछे देखे अंदर की ओर बढ़ गई। विशाल वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। कार का इंजन बंद हो गया, हवेली की खामोशी ने रात को अपने भीतर समेट लिया।